अब हम समाजशास्त्र की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे, यानी रिलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जिस तरह से प्रत्येक विषय की एक अपनी उपयोगिता होती है, उसी तरह से समाजशास्त्र की भी अपनी उपयोगिता है। विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में इसकी उपयोगिता कुछ और भी ज़्यादा है। भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों में विभिन्नताएँ देखी जा सकती हैं, चाहे वह धार्मिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। दूसरी ओर हम यह भी पाते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है, जबकि कुछ शहरी समुदायों में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में अनेक प्रकार की समस्याएँ भी देखी जा सकती हैं, जैसे जातिवाद, सामाजिक असमानता, घुसखोरी, अपराध, जनसंख्या की समस्या, गरीबी, स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति एवं उनका शोषण आदि। इन समस्याओं के निदान के लिए हमें उन्हें समझना होगा, और उन्हें समझने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने समाज को गहराई से समझना होगा। इस क्षेत्र में भी समाजशास्त्र हमारी सहायता कर सकता है। समाजशास्त्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकता है। पहला, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा समाज आज समस्याओं से घिरा हुआ है। भ्रष्टाचार, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, जातिवाद, बेकारी, गरीबी, दलितों एवं पिछड़ी जाति के साथ अन्याय, बाल अपराध, राजनीतिक अपराध, ग्रामीणों की समस्या इत्यादि। इन समस्याओं के सामाजिक कारण की खोज करके हम इसकी निष्पक्ष व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत विभिन्नताओं का देश है। भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर हम बटे हुए हैं। इस कारण हमेशा ही हमारे समाज में आंदोलन, दंगे आदि होते रहते हैं। ये समस्याएं राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। इन विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके हम बहुत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समाजशास्त्र अत्यंत उपयोगी है। तीसरा, नई परिस्थितियों से अभियोजन यानी एडजस्टमेंट कराने में सहायक। वर्तमान युग परिवर्तनशीलता का युग है। प्रत्येक दिन नई नई परिस्थितियां आती हैं, जहां अभियोजन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान परिस्थिति के विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र भविष्य की परिस्थिति का एक स्वरूप पैदा करता है। ऐसे स्वरूपों से परिचित होकर उन नई परिस्थितियों के लिए तैयार होते हैं। चौथा, ग्रामीण उत्थान में सहायक। भारत की अन्य समस्याओं में ग्रामीण जीवन से संबंध समस्याएं अत्यंत विकराल रूप लेती जा रही हैं। जनस्वास्थ्य, निरक्षरता, भूमिहीनों की समस्या, तेजी से बढ़ती हुई आबादी आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका शीघ्र निवारण अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्रीय अध्ययन इस क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है। पांचवा, जनजातियों की समस्याओं को हल करने में उपयोगी। जनजातियों की जीवन शैली बिल्कुल अलग है, अतः उनकी समस्याएं भी कुछ अलग प्रकार की होती हैं। सरकार उनके विकास के लिए अनेक सुविधाएं देती है, फिर भी इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे कौन से कारण हैं? इनकी समस्याओं की क्या प्रकृति है? इस तरह के कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें समाजशास्त्रीय विश्लेषण के द्वारा प्राप्त हो सकता है। छठा, जनसंख्या संबंधी समस्याओं को समझने में उपयोगी। आज हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या संभवतः सबसे भयंकर समस्या है। इसे कम करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया है, परंतु इच्छित परिणाम देखने को नहीं मिलता। जन विरोधी उपायों को अपनाने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसकी सही जानकारी हमें तभी हो सकती है जब हम समाज की मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं आदि को समझने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हमें समाजशास्त्र से काफ़ी सहायता मिलती है। सातवां, आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक। विकास एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, जिसका समाजशास्त्रीय पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन तथा समय समय पर उनके मूल्यांकन में समाजशास्त्रीगण काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऊपर के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता काफी व्यापक है। इसके अध्ययन से न केवल हमें अपने समाज की जानकारी होती है, बल्कि अन्य समाजों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऊपर दी गई जिन समस्याओं की चर्चा हुई है, उनका राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अतः हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इनका केवल समाजशास्त्रीय पहलू ही है। अब हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पर चर्चा करेंगे, यानी रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस। समाजशास्त्र विभिन्न समाज विज्ञानों में से एक है। समाजशास्त्र की तरह अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि में भी अपने अपने ढंग से सामाजिक समस्याओं का विवेचन होता है, लेकिन अलग होते हुए भी इनमें आपसी संबंध है। कहीं कहीं इनमें समानताएं भी देखने को मिलती हैं, विशेषकर अध्ययन पद्धति में। इन तमाम विज्ञानों में तथ्यों का भी आदान प्रदान होता है। परिप्रेक्ष्य के अलावा विभिन्न विज्ञानों के बीच अंतर विषय वस्तु को लेकर होता है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक निश्चित विषय वस्तु होती है, लेकिन विषय वस्तु के किसी एक पक्ष को लेकर भेद होता है। अर्थशास्त्र किसी विषय वस्तु के आर्थिक पक्ष पर बल देता है, तो राजनीति शास्त्र उसके राजनीतिक पक्ष पर। इन दोनों के विपरीत समाजशास्त्र उसी विषय वस्तु के सामाजिक कारणों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न समाज विज्ञानों में अंतर होते हुए भी ये आपस में संबंध हैं। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ज्ञान की ये दो शाखाएं गहरे रूप से आपस में संबंध हैं। मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र एक ओर धन का विज्ञान है और दूसरी ओर मनुष्यों के संबंध विषयों का के एक भाग का अध्ययन है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयास किया। अर्थशास्त्र में धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम विभिन्न उत्पादन, वितरण या विनिमय की प्रक्रियाओं को गहराई से देखते हैं, तो इनके पीछे सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रभाव पाते हैं। सारांश यह है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध आपस में जुड़े हुए हैं और समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इनमें एक तरफा संबंध नहीं होता। प्रायः तमाम सामाजिक संबंधों की जड़ों में आर्थिक संबंध होते हैं। परिवार, जाति, वर्ग आदि में आर्थिक हितों के आधार पर सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच कितना घनिष्ठ संबंध है, यह मार्क्स के दास कैपिटल एवं बेवर के द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने यदि यह प्रमाणित किया है कि आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का आधार है, तो वेबर ने यह प्रमाणित किया कि धर्म आर्थिक संगठनों को प्रभावित करता है। उनके अनुसार आधुनिक पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। टी पार्सन्स एवं स्मेल्सर ने इन दोनों ने आर्थिक सिद्धांतों को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ही अंग माना है। मिडल का एशियन ड्रामा और हॉजलिट्स की सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ ऐसी कृतियां हैं जो समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंधों को और भी ज़्यादा स्पष्ट करती हैं। कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनका दोनों में ही अध्ययन होता है, जैसे नगरीकरण, आर्थिक प्रगति, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, उद्योगीकरण, सामाजिक कल्याण, जनसंख्या इत्यादि। समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक जीवन के लगभग तमाम पक्षों का अध्ययन होता है, जबकि अर्थशास्त्र सामाजिक जीवन के केवल आर्थिक पहलू का ही अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी घटना की व्याख्या के लिए मुख्य रूप से आर्थिक कारणों की ही खोज की जाती है, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के योगदानों की भी चर्चा होती है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान। अब समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र, यानी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के बीच एक गहरा संबंध है। हर्शकोविट्स इन्होंने कहा था कि मानवशास्त्र मनुष्य एवं उनकी कृतियों का अध्ययन है, यानी एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। मनुष्यों की कृतियों में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृति आती है। मानवशास्त्र में मनुष्यों का उद्विकास एवं मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में भी मानव समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों विषयों में ही मानव समूहों के अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि हॉबेल ने भी कहा है। मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री अपने अध्ययन में एक दूसरे विषय की अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री मुख्य रूप से छोटे छोटे समुदायों का अध्ययन करते हैं, जैसे आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उन अध्ययनों में जिन अवधारणाओं का विकास हुआ है, उनका उपयोग समाजशास्त्रियों ने भी आधुनिक और जटिल समाजों के अध्ययन में किया है। पद्धति के आधार पर भी सामाजिक मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र में कुछ हद तक समानता है। सामाजिक मानवशास्त्र यानी सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि मानवशास्त्र की एक शाखा है, कि कुछ विचार को जैसे एलएच मॉर्गन, रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन आदि के योगदान समाजशास्त्र के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारत में एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, इनके बॉस, आंद्रे बेते, ये सब मानवशास्त्रियों की विभिन्न अध्ययन दोनों ही विषयों में एक समान महत्वपूर्ण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच समानता ज़्यादा और अंतर कम है। यह बात भारत के साथ विशेष रूप से लागू होती है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कंपैरेटिव सोशियोलॉजी भी कहकर पुकारा है। मानवशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से छोटी इकाई वाले समुदायों का अध्ययन किया गया है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक और जटिल समाजों पर अधिक बल दिया गया है। इसके बावजूद यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि जटिल समाजों पर भी मानवशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं, लेकिन तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि मानवशास्त्रियों के बीच आदिवासियों आदि का अध्ययन अधिक प्रचलित रहा है। आदिवासी समाज में धर्म, जादू, कला, विवाह, परिवार, नातेदारी व्यवस्था आदि मानवशास्त्रियों के विचार के लिए मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्रियों ने मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं उनसे उत्पन्न सामाजिक संबंधों आदि पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त समूह एवं विभिन्न संस्थाओं को भी समाजशास्त्र ने अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया है। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में समानताओं की चर्चा करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि पद्धति के स्तर पर इनमें काफ़ी समानता है, पर यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन का उपयोग अधिक हुआ है, जबकि समाजशास्त्र में तथ्य संकलित करने के लिए अनुसूची एवं प्रश्नावली का अधिक उपयोग होता है। इन दो विषयों के बीच सबसे बड़ा अंतर परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव का है। मानवशास्त्री मुख्य रूप से अपने अध्ययन के विषय को संस्कृति के संदर्भ में देखते हैं, जबकि समाजशास्त्री के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य इससे कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। समाजशास्त्र उद्विकास जैसे विषयों से दूर रहते हैं, उनके विषय वस्तु समकालीन महत्व समाजशास्त्री उद्विकास जैसे विषयों से दूर रहते हैं, उनकी विषय वस्तु समकालीन महत्व का होता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान एक दूसरे से सघनता से संबंध है। सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, ने तो इन दोनों विज्ञानों को और नज़दीक लाकर रख दिया है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में व्यक्ति अथवा उसका व्यक्तित्व केंद्रीय विषय वस्तु होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी एवं व्यक्ति की मानसिक स्थितियाँ जैसे कि संवेग इमोशंस, मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी परसेप्शन, सीखना यानी लर्निंग आदि मनोविज्ञान की विषय वस्तु हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है उनमें भीड़ का व्यवहार, एक आम मनुष्य का व्यवहार, समूह गतिकी, जनमत प्रचार आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष समाजशास्त्र के लिए उपयोगी हो सकता है। दोनों विषयों में अध्ययन पद्धति के स्तर पर बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक विशेषताएं एवं व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र में समूह, संस्था, सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है तथा समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखा जाता है, जबकि मनोविज्ञान में समूहों के केवल उस प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के कारण मनोविज्ञान की अध्ययन की एक सीमा है, जबकि समाजशास्त्र की सीमा निर्धारित करना कठिन है। मनोविज्ञान व्यक्ति का समाज में अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र कई व्यक्तियों के मिलने से जिस समाज का निर्माण होता है उसका अध्ययन है। अब समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र में कानून, राज्य, संप्रभुता, प्रशासन आदि का अध्ययन होता है। किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ एवं संस्कृति से जुड़ी होती हैं, अतः समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से गहरा संबंध है। मैक्स वेबर एवं पोरेटो ने कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, जिससे इनके बीच गहरे संबंध होने का आभास मिलता है। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र के बीच एक कड़ी का काम करता है। धीरे धीरे राजनीति शास्त्र में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बहुत प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए राजनीति शास्त्र के विद्वान समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लिपसेट, डॉल, ऑमंड और रुडोल्फ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं काफ़ी हद तक सामाजिक परिस्थितियों से संचालित होती हैं। मतदान व्यवहार में जाति का योगदान, अन्य सामाजिक कारणों का योगदान जैसे क्षेत्रीयता, सामाजिक पिछड़ापन आदि इस बात को सिद्ध करते हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। इन दोनों में पहला भेद यह है कि राजनीति शास्त्र हमारे सामाजिक जीवन के केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संपूर्णता का। यह भी कहा जा सकता है कि समाज में तमाम प्रकार के संदर्भ माफ करिएगा यह भी कहा जाता है कि समाज में तमाम प्रकार के संघर्ष एवं सहयोग की प्रक्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है, जबकि राजनीति शास्त्र में उन संघर्षों या सहयोगात्मक प्रक्रिया का अध्ययन होता है जिसका संबंध राज्य या कानून से होता है। कुछ विचारकों के अनुसार राजनीति शास्त्र अपेक्षाकृत अधिक आदर्शात्मक है। समाजशास्त्र यह नहीं कहता है कि हमें कैसा और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परंतु राजनीति शास्त्र में मूल्यांकनात्मक बातें होती हैं, जैसे सरकार और नागरिकों का संबंध कैसा होना चाहिए, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए इत्यादि। समाजशास्त्र में अध्ययन की इकाई राजनीति शास्त्र की तुलना में छोटी होती है, जैसे समाज, जाति, वर्ग, परिवार, समूह आदि, लेकिन राजनीति शास्त्र में अध्ययन की इकाई काफ़ी बड़ी हो सकती है, जैसे समस्त राज्य, सरकार शासन तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि। अब समाजशास्त्र एवं इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ निकट का संबंध है। विशेष तौर पर पिछले 2-3 दशकों से विद्वानों में इस प्रश्न पर जोरदार चर्चाएं हुई हैं। अब ऐसा समझा जा रहा है कि इतिहास केवल विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन की कहानी ही नहीं है, बल्कि उन सामाजिक स्थितियों की विवेचना भी है जो इतिहास के विभिन्न चरणों में सक्रिय होती रही हैं। विभिन्न इतिहासकार अब सामाजिक इतिहास यानी सोशल हिस्ट्री की चर्चा अधिक करते हैं। मार्क्स के समाजशास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। अर्नोल्ड टाइनबी के प्रसिद्ध ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री समाजशास्त्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। ऊपर की चर्चाओं से यही स्पष्ट होता है कि इतिहास और समाजशास्त्र में थोड़ा निकट का संबंध है। यद्यपि इतिहास सामाजिक विज्ञान की कोटि में पूरी तरह नहीं आता, फिर भी समाजशास्त्र से इसका महत्वपूर्ण संबंध है। इतिहास का संबंध मुख्यतः भूतकाल से है, जबकि समाजशास्त्र का वर्तमान काल से। इतिहास मूल रूप से वर्णनात्मक है, जबकि समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक। इतिहास में वर्णित घटनाओं का पुनः परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि सामान्यतः वे एक बार घटित हैं, अतः इसके निष्कर्ष का भी पुनः परीक्षण करना कठिन है। समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण संभव है। इतिहासकार विशिष्ट घटनाओं में रुचि लेते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय समान घटनाओं में। उदाहरण स्वरूप, नेतृत्व का अध्ययन इतिहास एवं समाजशास्त्र दोनों विषयों में होता है, परंतु जहां इतिहास विशिष्ट नेताओं जैसे नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क आदि के उत्थान एवं पतन का अध्ययन करता है, वहां समाजशास्त्र नेतृत्व की पूरी समग्रता में अध्ययन करता है। पर समाजशास्त्र और इतिहास अध्ययन पद्धति के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं निष्कर्षों में वैज्ञानिकता लाने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, जो इतिहास में नहीं होता। समाजशास्त्र के विपरीत इतिहास का न तो कोई अपना विशिष्ट सिद्धांत है और न ही कोई अनुसंधान की अपनी प्रविधि। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एक गहरा संबंध है, यद्यपि इनका अलग अलग अस्तित्व है। आधुनिक समय में तमाम विज्ञान एक दूसरे के पूरक के रूप में लिए जाते हैं। विज्ञान की एक शाखा द्वारा संकलित तथ्य और निष्कर्ष दूसरी शाखा द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, विभिन्न शाखाओं में अनेक स्तरों पर समानता भी है, अतः हमें इन तमाम विज्ञानों को बिल्कुल अलग नहीं मानना चाहिए।